आत्मभावना लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेर्य, ओम नमः सिद्धेर्य, ओम नमः सिद्धेर्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाऊणं। येनात्मा बुद्ध्यस्य परत्वे नैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। केनात्मा बुद्ध्यतात्मैव। क्या है समाधि तंत्र में वो उससे जा आत्मभावना में अच्छा छपा है ना। हाँ, पृष्ठ संख्या 18 है। समाधि तंत्र को हम यहाँ से ले लेंगे, बाद में आत्मभावना को देखेंगे। कल हमने 6 नंबर की गाथा यानी श्लोक पढ़ा था, उस पेज पर 7 लिखा है, परंतु है अपना 6 का हमने अन्वयार्थ भी देखा था। छह नंबर के श्लोक का अन्वयार्थ देखा था, उसके भी टीका देखने जा रहे हैं। यहाँ तो परमात्मा के नाम बताए थे, निर्मल, केवल, शुद्ध, विविक्त, प्रभु, अव्यय, परमेष्ठी, परात्मा, ईश्वर और जिन, उसी की टीका। निर्मल एटले कर्म मल रहित, वही तो अभी इसमें कुछ टीका की खास विशेष बात नहीं है। केवल एटले शरीर आदि ना संबंध रहित, शुद्ध एटले द्रव्य कर्म भाव कर्म ना अभाव ना कारणे परम विशुद्धि वाला। हाँ,
पर्याय में परम विशुद्धि।
हाँ, पर्याय में परम विशुद्धि वाला। तो ये परमात्मा की सभी बातें अवस्था में ही वो सब घटित होती, यहाँ अवस्था की बात है सारी ही। विविक्त एटले शरीर कर्मादि थी नहीं स्पर्शायला, प्रभु एटले इंद्रादिना स्वामी, अव्यय एटले प्राप्त थयेल अनंत चतुष्टयमय स्वरूप थी च्युत नहीं थयेला, परमेश एटले परम अर्थात इंद्रादिथी वंद्य एवं मोटू पद तेमा जे रहे छे ते स्थानशील परमेष्ठी परात्मा एटले संसारी जीवो थी उत्कृष्ट आत्मा एवा प्रकारना जे शब्दो छे ते परमात्मा ना वाचक छे। परमात्मा को ही बताने वाले ये सभी अलग अलग शब्द हैं। परमात्मा इत्यादि थी तेमने ज दर्शावाय छे। परमात्मा एटले सर्व प्राणियों मा उत्तम आत्मा, परम आत्मा बताए ना, परम यानी उत्कृष्ट। ईश्वर एटले इंद्रादि ने असंभवित एवा अंतरंग बहिरंग परम ऐश्वर्य थी सदाय संपन्न, जिने एटले सर्व कर्मों मूल माथी नाश करनार इत्यादि परमात्मा ना अनंत नाम छे। कितने हैं? अनंत बताए। भावार्थ, निर्मल, केवल, शुद्ध, विविक्त, प्रभु, अव्यय, परमेष्ठी, परमात्मा, ईश्वर, जिन वगैरह नामों परमात्मा वाचक छे। आ नामों परमात्मा ना स्वरूप ने बतावे छे। ते स्वरूप ने ओळखीने पोताना आत्मा ने पण तेवा स्वरूपे चिंतवो ते परमात्मा थवानो उपाय छे। मात्र परमात्मा के नाम लिए हमने अलग अलग नाम लिए, हमने सहस्र नाम जपे क्योंकि अलग अलग क्योंकि इतने यहाँ तो अनंत नाम बताए थे, हमने तो हजार हजार नाम लेके पूजा भी की उनकी, परंतु उनका अगर हम स्वरूप नहीं जानते हैं तो कोई उससे फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ क्या भावार्थ में क्या लिखा है? ते स्वरूप ने ओळखीने, भले अलग अलग नामों से उनके वो विशेषताएं बताई जाती हैं, उन्हीं का स्वरूप नक्की हो जाता है। निर्मल कहने से, केवल कहने से उन्हीं का जो स्वरूप है वो और स्पष्ट हो जाता है। तो कहते उनका स्वरूप पहचान कर पोताना आत्मा ने पण तेवा स्वरूपे चिंतवो, ये सबसे महत्व की बात है। क्योंकि अभी वर्तमान में देह भी है, कर्म भी है, वो तो राग द्वेष भी है, विभाव भाव भी है, और भी सभी बातें जो उनके जो निर्मल है यहाँ सब मल है, यानी पर्याय में तो सब ऐसा कुछ प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी स्वरूप से सामर्थ्य से मैं ऐसा हूँ ये नक्की करना है। यहाँ लिखा है कि ते स्वरूप ने ओळखी ने पोताना आत्मा ने पण तेवा स्वरूपे चिंतवो, ते परमात्मा थवानो उपाय छे। क्योंकि कायमी रहने वाला वही तो अंश है ना, जिसको हम स्वभाव भाव कहेंगे। पर्याय तो पलटती रहेगी यहाँ पर, अभी तो विभाव पर्याय चल रही है और वो भी अलग अलग उसके विभाव होते रहते हैं। तो एक रूप एक सदृश जो कायमी ध्रुव स्वभाव भाव है, तो हमें भी सिद्ध के समान चिंतन करना है। आत्मा मां शक्ति रूपे रहेला गुणों जीव ने भान थाय तेटला माटे भिन्न भिन्न गुणवाचक नामों थी परमात्मा नी ओळखाण करावी छे। आत्मा में तो अनंत गुण है, शक्ति रूप है, सामर्थ्य रूप है, और हमें अपने ही स्वरूप की पहचान हो जाए, इसलिए परमात्मा के अलग अलग नाम इसलिए बताए, वो नाम उनकी विशेषताओं को बताने वाले। आत्मा चैतन्य आदि अनंत गुणों नो पिंड छे, आदि में वो सभी आ गए जितने अनंत गुण हैं। चैतन्य ने ज्ञान दर्शन से लेकर वो मुख्य है, इसलिए उसका नाम पहले ले लिया। आ गुणों भगवान मां पूर्णपणे विकसित थई गया छे, यानी वो पर्याय में प्रकट हो गए, गुण विकसित हुए ने वो गुण का जितने सामर्थ्य है वो पर्याय में प्रकट हुआ, उसको कहेंगे गुणों का विकास हुआ। तेथी ते गुणों नी अपेक्षा है ते वो अनेक नामों थी ओळखाय छे।
इनके हिसाब से हम सहस्त्र नाम लेते तो अनंत नाम ले सकते हैं।
अनंत नाम लेने के लिए बिल्कुल, क्योंकि अनंत शक्तियां हैं तो अनंत नाम होंगे उनके। परमात्मा ने गुण अपेक्षाएं जेटला नाम लागू पड़े छे, देखो यहाँ गुण अपेक्षाएं नाम का अर्थ होता है वो गुण उनमें प्रकट हुए हैं, वो तो पर्याय विकसित हुई है, ऐसे उसको हम यहाँ गुण के, गुण तो सभी में है, हमारे में जो शक्ति अपेक्षा है वहाँ उनके गुण का अर्थ होता है उनके प्रकट पर्याय, उसको भी गुण कहने में आते हैं। तो परमात्मा ने गुण अपेक्षाएं जेटला नाम लागू पड़े छे, मैंने एक बार बताया था जो नाम रखे जाते हैं कहीं कहीं गुणों की अपेक्षा नाम रखे जाते हैं, उनमें वो गुण है तो वो नाम लागू होता है। कुछ नाम तो बिना कुछ भी हम अपने चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं। बच्चे का नाम सर्वज्ञ रखा, वो सर्वज्ञ थोड़े ही है, तो नाम रखने से तो नहीं हो जाता है, कुछ भी रख सकते हैं हम, चॉइस इज आवर है ना, अनंत चॉइस है उसके लिए। परंतु कुछ नाम तो जो जैसा गुण है वैसा अगर नाम रखते हैं तो उसको कहेंगे गुणों की अपेक्षा से जो इतना नाम लागू पड़े छे, ते बधाए नामो आ आत्मा ने पण स्वभाव अपेक्षाएं लागू पड़े छे, वहां तो उन्हें प्रकट पर्याय की अपेक्षा वो नाम है, इसलिए गुणों की अपेक्षा बताए, और यहाँ हमारे में स्वभाव की अपेक्षा। देखो यहाँ गुण यानी वो तो द्रव्य के संपूर्ण भागों वो वाला गुण नहीं लिया, गुण यानी यहाँ उनकी पर्याय लिए, अवस्था लिए, और यहाँ हमारे लिए स्वभाव शब्द लगाया। स्वभाव तो दोनों में है, पर उनका स्वभाव जैसे वो गुण पर्याय में प्रकट हुए हैं, इस तरह से लेना। कारण के शक्ति आगे लिखा ही है, शक्ति अपेक्षाएं बनने आत्माओं समान छे, तेमा काई फेर नथी, जे परमात्मा ना गुणों ने बराबर ओळखे छे, यहाँ गुण है वो जो पर्याय पर्याय समझना, ते पोताना आत्माना स्वरूप ने जाण्या वगर रहे नहीं। उसके लिए नीचे फुटनोट में एक आकड़ा लिखा है, जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करे। ये प्रवचन सार की 80 की गाथा है, 80वीं गाथा। ये तो बहुत फेमस है ना, प्रसिद्ध है कि जो अरिहंत को द्रव्य से, गुण से और पर्यायपने से जानता है, यानी वो नक्की करता है उनका स्वरूप, तो वो अपना स्वभाव नक्की करता है और उसके मोह नहीं रहता। ये स्टार वो कहाँ, वो सातवीं की गाथा के लिए। अच्छा, अभी हम आते हैं पृष्ठ संख्या 19 समाधि तंत्र की। अभी आपके पेज देख लो।
हाँ, अभी एक बाकी है ना थोड़ा सा, पेज नंबर 19 का चालू है।
वही तो मैं कहती हूँ, अभी 19 पर आना, आपका 21 है, पर वो कंटिन्यूएशन देखना बराबर, क्योंकि उसी पेज पर 7 नंबर की गाथा शुरू हो रही, ऊपर उसको नहीं देखना है। 6 नंबर की टीका, उसका भावार्थ अभी फिनिश होने को आया है। हमारे पुस्तक में 19 पृष्ठ पर आए हम समाधि तंत्र के, क्या कह रहे थे वहां से 18 से कंटिन्यूटी में लेते। जे परमात्मा ना गुणों ने बराबर ओके छे, ते पोताना आत्मा ना स्वरूप ने जाण्या वगर रहने। जेटला गुणों परमात्मा मा छे, तेटला ज गुणों दरेक आत्मा मा छे। यहां जिसको हम गुण कहते उसकी बात, और पहले जो गुण की अपेक्षा नाम है वो तो पर्याय की बात बताई। पोताना त्रिकाली आत्माने सन्मुख थईने, त्रिकाली आत्माने स्वभाव भाव, स्वभाव के सन्मुख होकर तेमनो पूर्णपणे विकास करीने आ आत्मा पण परमात्मा थई शके छे। क्योंकि जो स्वभाव सामर्थ्य है अपने, उसका पहले में पहले विश्वास लाना चाहिए। वो सामर्थ्य का पता तो हमें भगवान की वाणी के द्वारा पता चला, ज्ञानियों ने हमको बताया, हमने वो आगम से पढ़ा, फिर युक्ति अनुमान जिसको कहते हैं उसके द्वारा उसको नक्की निर्णय तक पहुंचे, और स्वभाव सन्मुख होने पर एक क्रम से उसका विकास शुरू हो जाता है। अब ये 7 नंबर का श्लोक शुरू करने के पहले हम आत्मभावना पुस्तक पर आते हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या है 27, जहाँ 6 नंबर की गाथा लिखी है। अपने अपने पेज में पुस्तक में देखो, छोटी होगी तो वहीं से देखो। देखो, परमात्मा स्वरूप ने ओळखावनारा अनेक नामों, क्योंकि परमात्मा के अलग अलग नामों की अपेक्षा उनका हमें स्वरूप ख्याल में आता है, केवल उनको जानने के लिए नहीं, अपने को जानने के लिए, तो हमारा स्वरूप और स्पष्ट ख्याल में आ जाता है। 5वीं गाथा में परमात्मापणु उपादेय कहू, यानी वो प्रकट करने योग्य है, तेनी विशेष ओळखाण करावा माटे हवे 6ठी गाथा में अनेक नामों थी तेनी ओळखाण करावे छे। निर्मल केवल शुद्ध विविक्त प्रभुरव्यय परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन, परमात्मा ईश्वरो जिन। निर्मल केवल शुद्ध विविक्त प्रभु अव्यय परमेष्ठी परमात्मा ईश्वर ने जिन इत्यादि नामों परमात्मा ना वाचक छे। वो समाधि तंत्र में प्रभु और अव्यय इकट्ठा लिखा था, उसमें बीच में कॉमा नहीं था। भावार्थ में नहीं, भावार्थ में तो विविक्त प्रभु लिखा है ना, विविक्त और प्रभु में, प्रभु और अव्यय में है, विविक्त और प्रभु में अंत कॉमा नहीं डाला था ना। यहाँ अलग अलग है ना, विविक्त अलग है और प्रभु अलग है, हाँ उसमें एक कॉमा डालना। आपके पुस्तक में है तो ठीक है, अरे कॉमा डालने में क्या है, करेक्शन करने के लिए तो अपना कर्तव्य है। भगवान परमात्मा मोहादि द्रव्य कर्म तेम भाव कर्म रूप मलथी रहित होवाथी निर्मल छे। इसको मल कह दिया, द्रव्य कर्म और भाव कर्म समझते हो आशा क्या है? भाव कर्म किसको कहने? मोह राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं। और द्रव्य कर्म? नहीं, आठ कर्म। बहुत आपको मालूम है, हाँ गड़बड़ी हो रही है। शरीर मन वाणी को तो हम नौ कर्म कहते हैं। यहाँ तो परमात्मा है तो अरिहंत भी परमात्मा है, सिद्ध भी परमात्मा है, इसलिए यहाँ नौ कर्म की बात अभी नहीं उठाई है। अकेले सिद्धों की बात करेंगे तब करेंगे। तीनों ही कर्म मल से रहित है। यहाँ तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म को ले लिया। अब आप कहेंगे इसके भी चार घाती आघाती तो बाकी है। वो तो नहीं के बराबर है, क्योंकि जीव के गुणों में निमित्त रूप से होने वाले वो तो चार घाती कर्म ही तो थे। तो कहते द्रव्य कर्म, मोहादि द्रव्य कर्म लिखा। मोहादि द्रव्य कर्म में नहीं, घाती ले जाएगा। और सिद्धों के लिए तो सारे ही ले लेना। तेम भाव कर्म रूप मलथी रहित होवा थी निर्मल छे, शरीरादिना संबंध रहित होवा थी केवल छे। केवल का अर्थ है मात्र, सिर्फ, ओनली। क्योंकि जीव द्रव्य तो अलग ही है, परंतु अभी शरीर के साथ अभी इन संयोग रूप से है, किंतु परमात्मा ने तो बिल्कुल पूरा अनुभव कर लिया है, यानी उन्होंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है। हम भी अनुमान से नक्की कर सकते हैं उसको। अरिहंत परमात्मा पण खरेखर शरीरादिना संबंध रहित छे। क्या कहते हैं? सिद्धों के तो शरीर ही नहीं है, परंतु यहाँ क्या कह रहे? अरिहंत भी खरेखर शरीरादिना संबंध रहित छे, केम के शरीर के इंद्रियो जनित सुख दुख के ज्ञान तेमने नथी। यानी इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। कौन कौन से इंद्रियों के द्वारा जानते हैं अरिहंत भगवान? हम भी अपने ज्ञान से भी तो किससे होता है? वे तो केवल ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। वहाँ इंद्रियों की तो जिसको ये निमित्त भी नहीं है। हम आपके लिए तो इंद्रिय निमित्त में हम कहेंगे, वो इंद्रिय ज्ञान भी नाम देंगे उसको। तो कहते कि शरीर के इंद्रियोजनित सुख दुख के ज्ञान तेमने नती। यानी वो तो उनका अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, अनंत अतीन्द्रिय सुख है, तो उनका जो सुख भी इंद्रियातीत है और ज्ञान भी इंद्रियातीत है। ते वो अतीन्द्रिय थई गया छे। इसलिए शरीर का हमारा तो सारा शरीर से ही निमित्त नैमित्तिक संबंध हर समय चल रहा है, तो वो तो कहेंगे उससे रहित हो गए, इंद्रियातीत हो गए, अतीन्द्रिय हो गए। द्रव्य कर्म भाव कर्मनो अभाव होवा थी, अभी बात आई ना, द्रव्य कर्म है वो भी मोहादि द्रव्य कर्म ले लिए, भाव कर्म में मोह राग द्वेष के परिणाम लिए, उनका अभाव होवा थी। अभाव है अभी वो तो नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी वो नीचे के गुणस्थान में अभाव हुआ कहते हैं, अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ तो चौथा गुणस्थान हुआ, वहां तो वो कषाय नहीं है अभी वर्तमान में, परंतु कर्मों की विद्यमानता है सत्ता में, जब तक क्षयिक समय दृष्टि नहीं होता। वैसा नहीं लेना यहाँ पर, यहाँ वे कर्म भी नहीं रहे और वो जीव के भाव भी नहीं रहे। हाँ,
यहाँ एक बात हम मतलब नोट हो रही है कि वहाँ परमात्मा की जब बात थी तब तो उन्होंने इन जनरल बात की, लेकिन गुरुदेव श्री परमात्मा एप्लीकेबल टू सिद्ध और अरिहंत दोनों को अप्लाई करके बोल रहे, मतलब जुदे जुदे तरीके से। वहाँ सिर्फ परमात्मा ऐसे बात हुई थी, अभी हमने देखा ना, क्या नाम है, समाधि तंत्र।
हाँ, समाधि तंत्र में जो पढ़ा था वो परमात्मा इन जनरल की बात बताई थी। हाँ, ये दोनों पर वो कैसे लागू होता है वो और विस्तार से बता रहे, यानी अरिहंतों के लिए भी लागू होता है, सिद्धों के भी। सिद्धों के तो शरीर ही नहीं है, परंतु यहाँ शरीर होते हुए भी उससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि ना इंद्रियों के द्वारा उनके सुख है और ना ही ज्ञान है, अति इंद्रिय हो गए। देखो, चार घाती कर्मो टळ्या, त्या बाकी रहेला चार अघाती कर्मो नो पण क्षय थतो जाय छे। क्या कहा? हर समय असंख्यात गुणा निर्जरा चल रही है, हर समय वो घटते चले जा रहे हैं और अल्पकाल में उनका भी नाश होने वाला परिपूर्ण। तेओ રાગાદી અશુદ્ધતા ઉપજાવતા નથી તેઓ એને કોણ? હા બહુ અચ્છા, નહીં તો આપ કહેંગે અનંત પરમાત્મા. યાની વો જો ઉસકા જો પ્રતિ સમય ખીર રહે હૈ, હમ ઉસકા ઉદય ભી કહેંગે, ઉસકા ખીરના ભી કહેંગે, હે ના? કુછ કા ઉદય હૈ ઉસમે, કુછ તો તો ઉદય બિના ખીર રહે હૈ. તો કહેતે પરંતુ વો ક્યા હૈ, તેઓ રાગાદી અશુદ્ધતા ઉપજાવતા નથી. અભી રાગ કો ઉપજાવને વાલે કુછ રહે નહીં, ના કર્મ રહે ના ઉનકે ભાવ રહે. માટે અરહંત ભગવાન પણ પરમ વિશુદ્ધિને પામેલા હોવાથી શુદ્ધ છે. પરમ વિશુદ્ધિ અને પરમ વિતરાગતા લેના યહાં પર, ક્યોંકિ હમ શ્રેણી મેં કહો યા સમ્યક કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ તો તભી કહેતે ના જીવ કરતા હૈ તભી ઉસકી વિશુદ્ધિ અનંત ગુણા બઢ રહી, અનંત ગુણા બઢ રહી. આપને કિતની બાર સુના, અનંત બાર સુના કે નહીં? અભી દેવલાલી મેં તો કહેતે ઉસકી વિશુદ્ધિ બઢના, વહાં તો કષાય કી મંદતા કી ઓર બઢને કો વિશુદ્ધિ બઢના કહેતે, યહાં પરમ વિશુદ્ધિ મેં વિતરાગતા કો લેના. તો પરમ વિશુદ્ધિને પામેલા ને પ્રાપ્ત કરેલા હોવાથી શુદ્ધ છે. રાગાદિથી અત્યંત ભિન્ન થઈ ગયા હોવાથી ભગવાન વિવિક્ત છે. જો કોઈ હમે વિવિક્ત આત્મા કા સ્વરૂપ બતાએંગે તો સ્વભાવ સે હૈ, પણ વો તો પર્યાય મેં રાગ સે ભિન્ન હો ચુકે. અભી રાગ કા તો નાશ હી હો ચુકા હૈ, રાગ સે રહિત હી હો ગયે, और राग के लिए निमित्तभूत ऐसे कर्म भी वहां नहीं रहे. तो ये विविक्त छे, तो विविक्त वर्तमान में विविक्त ही हो गए हैं, इस तरह से उसको विविक्त कहा. क्योंकि पहले उन्होंने तीसरी गाथा में बताया था, मैं आपको विविक्त आत्मा का स्वरूप बताऊंगा, तो सबको बताने वाले, तो सबका आत्मा विविक्त ही है ऐसा कह रहे हैं, परंतु ये तो साक्षात हो गए उससे. हाँ, हमें तो विविक्त राग की अवस्था में पर्याय में राग द्वेष होते हुए हमें विविक्त आत्मा का स्वरूप जानना है, और वही एकमय मार्ग है कि राग विद्यमान होते हुए उससे रहित अपने को कैसे देखना, और ये वो साक्षात हो गए हैं इसलिए उनको विविक्त कहा. अब प्रभु का अर्थ क्या है? इंद्र वगैरह ना पूर्ण स्वामी होते. पूर्ण क्यों लिया? क्योंकि इंद्र भी श्रेष्ठ होते देवों में, अपने अपने देवों के इंद्र, उनके तो कितने ही लाखों विमानों के, असंख्यात देवों के स्वामी है वो. तो कहते उनके भी ये स्वामी है प्रभु. अथवा केवल ज्ञान रूप प्रभुता प्रकटी गई हुआ थी प्रभु छे. केवल ज्ञानादि जे अनंत चतुष्टय प्रकट्या, ये अनंत चतुष्टय कौन कौन से है नितिन भाई बताएंगे आप? કેવળ સુખ, અનંત ચતુષ્ટય કહેતે તો જ્ઞાન કો અનંત કહેના ઉચિત હૈ, તો વો કેવળ જ્ઞાન હૈ, પરંતુ યહાં ચાર બાતે બતાને હૈ જો અનંત રૂપ સે વિદ્યમાન હૈ યા પ્રકટ હુઈ હૈ. તો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ ઓર અનંત વીર્ય પ્રકટ્ય, તેનાથી કદી ચ્યુત થતા નથી, તેથી તે અવ્યય છે. અભી એ જો પ્રકટ હુએ હે વો અનંત કાલ તક એસે હી ચલેગા, હર સમય નયા 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 નયા. ઇન્દ્રાદિકથી વંદ્ય, વંદ્ય ને વંદનીય એવા પરમ ચૈતન્ય પદમાં સ્થિત હોવાથી તેઓ પરમેષ્ઠી છે. એ તો હમ બાલબોધ મેં ભી શીખે ને, પરમેષ્ઠી કિસકો, પરમ પદ મે જો સ્થિત હૈ વો પરમેષ્ઠી. હા, પરમ ઇષ્ટ ભી કહેતે. સંસારના જીવોથી પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ આત્મા હોવાથી તે પરાત્મા છે. પર કહો યા પરમ કહો, એસા હૈ ને, પરમાત્મા ભી એસા હી શબ્દ તૈયાર હુઆ. અને તે જ ઉત્તમ હોવાથી પરમાત્મા છે. ઇન્દ્રાદિને પણ ન હોય એવા અંતરંગ કેવળ જ્ઞાનાદિ અને બહિરંગ સમોસરણાદિ દિવ્ય ઐશ્વર્ય સહિત. દેખો યહાં અંતરંગ ઐશ્વર્ય ઓર બાહ્ય ઐશ્વર્ય, ક્યોંકિ ઉનકો ઈશ્વર કહે રહે હૈ. ઈશ્વર શબ્દ, ઈશ્વર સે ઐશ્વર્ય શબ્દ તૈયાર હુઆ. तो ये कौन सा ऐश्वर्य है उनके? तो हम तो इंद्रादिकों को याद करते, उनके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, रिद्धियां हैं। तो कहते उनके भी नहीं पाई जाती। तो अंतरंग में इनका ऐश्वर्य क्या है? तो केवल ज्ञान आदि जो अभी हमने अनंत चतुष्टय देखे वो है। और बाह्य में उनके क्या ऐश्वर्य है? दिव्य ऐश्वर्य, तो समव शरण आदि विभूति। अने समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म नु उन्मूलन करी नाख्यो हुआती, उन्मूलन ने मूल से उखाड़ दिया है, जड़ से। तेओज जिन छे, जिन्हें उन्होंने जीत लिया है। आ प्रमाणे आ बधा नामों शुद्ध आत्मा रूप परमात्मा ना वाचक छे, वाचक है ने उसका स्वरूप बताने वाले हैं। परमात्मा ना आवा स्वरूप ने ओळखी ने पोताना आत्मा ने पण तेवा स्वरूपे चिंतवो, क्योंकि वो वहां भावार्थ लिखा है तो इसी के आधार से लिखा है ना, ते परमात्मा थवानो उपाय छे। क्यों इतने इतने नाम क्यों देखना है? एक परमात्मा कहने से नहीं होता क्या उनका? यहाँ क्या लिखा है आपके हाथ में है ना पुस्तक, नीचे से तीसरी लाइन, परमात्मा ना आवाज स्वरूप ने ओळखी ने, क्योंकि उनके नाम उनके गुणों को बताने वाले हैं। अलग अलग नामों से उनकी जो विशेषताएं है वो और अधिक हमें भाषित होती है। तो कहते उनका स्वरूप पहचान कर पोताना आत्माओं ने पण तेवा स्वरूपे चिंता, इसका एक एक नाम जो है वो अपने पर अप्लाई करना कि मैं भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि स्वभाव तो ऐसा ही ना, जीव द्रव्य ऐसा है। बाकी पर्याय में राग है, वो शरीर के साथ संबंध है, कर्म है, उसकी बात नहीं। उसके साथ होते हुए, संयोग में होते हुए मैं उनसे भिन्न हूँ, ये बात ख्याल में लेना है। तो पोताना आत्मा ने पण तेवा स्वरूपे चिंतवो, देखो यही उपाय है कि पर्याय में ये परमात्मा पद प्रकट करने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आप कहेंगे मुनि भी बनना पड़ेगा, ये पड़ेगा वाली बात नहीं है, ये तो हो जाता है। वो सारी जो अवस्था है बीच वाली वो सहज रूप से हो जाती है। पड़ेगा में हमें लगता है दुख लगता है, क्या करे वो तो। डायरेक्ट कोई सुविधा होती तो अच्छा होता है, ऐसा लगता है ना। यानी अभी मान्यता में, अभिप्राय में कहीं ना कहीं वो जो मुनि जो जिस संयोग में रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रे वो बिचारे, हाँ बिचारे डिफिकल्ट है। वो तो अतीन्द्रिय आनंद के, इसको तो चलते फिरते सिद्ध बताए। तो तेज परमात्मा थानो उपाय छे। इंद्र 1000 ने 8 नामों थी भगवान की स्तुति करे छे। 1000 नाम लेते हैं, उनके अलग अलग लक्षण भी बताते हैं। अने संत मुनिवरो पण अनेक अनेक नामों थी भगवान ने स्तुति करे छे। ये आपको मालूम है, मुनि के पीछे 108 लगाते मालूम है। जैसे आचार्य शांति सागर जी तो 108 ऐसा लिखते हैं आचार्य, हाँ मालूम नहीं है। और भगवान के पीछे क्या लिखते हैं? 1008, 1008 महावीर स्वामी ऐसा लिखेंगे, हाँ मालूम नहीं ना। हाँ यही उनके नामों से ही 1000 नाम, ये तो मुनियों के ऐसी पदवी होती है। अभी उसका एग्जैक्ट कारण मुझे भी मालूम नहीं। शुल्लक वगैरह के 105 लगाते मेरे ख्याल से, हाँ आरिका भी लगाते 105, ये उनका पद बताया जाता है। मुझे याद है 109वीं जन्म जयंती थी स्वामी जी की देवलाली में, तो वहाँ ऐसा 109 लिखा था और आगे कुछ लिखा था। तो ये अपने चानेकर अकोला वाले मुझसे आके पूछा ये 109 कौन सी पदवी होती है, क्योंकि उन्होंने 108 105 1008 वगैरह तो ये मैंने बोला ये कुछ पदवी नहीं है, ये उनका अभी जन्म जयंती 109वीं जन्म जयंती है, इसलिए वो 109 लिखा है। अभी 125 भी है ना, तब की बात है। अने संत मुनिवरो पण अनेक अनेक नामोंथी भगवान नी स्तुति करे छे। संतो अंदरमा कर्मना संबंध रहित ने रागादि रहित પોતાના શુદ્ધ પરમાત્મ સ્વરૂપને પામેલા એવા અરિહંત સિદ્ધ ભગવંતો પ્રત્યે બહુમાનનો ભાવ આવતા અનેક પ્રકારે સ્તુતિ કરે છે. જેને આવા શુદ્ધ આત્માનું લક્ષ્ય હોય તે જ પરમાત્માની વાસ્તવિક સ્તુતિ કરી શકે. ક્યાં કહા, કોઈ અજ્ઞાની ભી ગા ગા કર બહુત બઢિયા સ્તુતિ કરતા હોગા, નાચતા હોગા, હૈ ને? તો કહેતે કે કિસકી વાસ્તવિક સ્તુતિ હોગી, કે જિસને અપને શુદ્ધ આત્મા કા લક્ષ્ય કિયા હૈ, ઉસકા અનુભવ કિયા હૈ, ક્યોંકિ ઉન્હોને હી પરમાત્મા કા સચ્ચા સ્વરૂપ જાન લિયા, ક્યોંકિ પરમાત્મા જૈસે અપને આત્મા કા અપને સ્વભાવ કા ઉન્હોને અનુભવ લિયા, તો ઉનકી ભક્તિ સચ્ચી ભક્તિ કહેલાયેગી. યહાં કહા વાસ્તવિક સ્તુતિ કરી શકે. પરમાત્માને કોઈ પણ ગુણવાચક નામથી ઓળખી શકાય છે. એ ઇસકો ગુણવાચક નામ કહે, ઉનકે ગુણો કો બતાને વાલે, ગુણ કે વાચક, શબ્દો કો વાચક કહેતે હૈ, ઓર શબ્દ જિસકો બતાતે વો ઉસકા વાચ્ય હુઆ. તો એ ગુણો કો બતાને વાલે જો નામ હૈ, ઉનસે ભગવાન કો હમ પરમાત્મા કો પહેચાન સકતે હૈ. બોધ સ્વરૂપ હોવાથી તેમને બુદ્ધ પણ કહેવાય. એ પહેલે વાત આવી હતી ને, બુદ્ધ, શિવ, વિષ્ણુ. હા, કલ્યાણ સ્વરૂપ હોવાથી તેમને શિવ પણ કહેવાય. પોતાના સર્વ ગુણોમાં વ્યાપક હોવાથી તેમને વિભુ પણ કહેવાય. મોક્ષ માર્ગની રચના કરનારા હોવાથી તેમને બ્રહ્મા પણ કહેવાય. ધાતા કહાતા ઇસમે, વિધાતા, ધાતા શબ્દ આયા થા યહાં. આમ ગુણની ઓળખાણ પૂર્વક ગમે તે નામ કહી શકાય છે. અને હમે તો ઉનકે ગુણો કી પહેચાન કરાની ઇનકે દ્વારા, ઇન નામો કે દ્વારા. એને એ કિસી વ્યક્તિ વિશેષ કા નામ નહીં. બુદ્ધ યા શિવ કહેને સે બહારી જો જનતા જો હૈ કિસી વિશિષ્ટ વ્યક્તિ કો કહેતે વૈસી બાત નહીં. જેને શુદ્ધ આત્માની દૃષ્ટિ છે, શુદ્ધ આત્મા કી દૃષ્ટિ, શુદ્ધ આત્મા કો જિન્હોને સ્વભાવ એને સ્વરૂપ સે અંગીકાર કિયા હૈ, યાને જિન્હોને અનુભવ કર દિયા હૈ, એવા અંતરાત્મા તો પરમાત્માની ભાવના ભાવે છે, ને બહિરાત્મા તો રાગાદીની ભાવના ભાવે છે. દેખો ક્યાં એક ગજબ કી વાત, ક્યાં કહા હૈ. અંતરાત્મા ભી ભક્તિ કર રહે ભગવાન કી, ઓર બહિરાત્મા ભી ભક્તિ કર રહા હૈ. અંતરાત્મા ક્યાં કર રહે હૈ, ઉસકો શુદ્ધાત્મા કી દૃષ્ટિ હૈ, વો પરમાત્માની ભાવના ભાવે છે. અપને શુદ્ધ સ્વરૂપ જો પરમાત્મા જૈસે હૈ ઉસી મેં સન્મુખતા કી કોશિશ કર રહા હૈ, ઓર બાહ્ય મેં ઉસકો પરમાત્મા કે પ્રતિ ભક્તિ ભાવ આતા હૈ, કે હો ઇસ જીવને એસા એસા સ્વભાવ પ્રકટ કિયા હૈ, ઇસમે ઉનકા બહુત બહુમાન આતા હૈ ઉનકા. ઓર બહિરાત્મા ને તો, બહિરાત્મા તો રાગાદીની ભાવના ભાવે છે, ઉસકો તો રાગ કી અધિકતા હૈ, હૈ ના? તો વો જો ભક્તિ કર રહે ના ઉસમે ભી ઉસકો વો દેખો એને ઉસમે ભી અહમપના આતા હૈ, મેં કૈસી અચ્છી ભક્તિ કર રહા હું, દુનિયા કો દિખાના ભી ચાહતા હૈ. ભગવાન પરમાત્માને રાગાદીનો કે કર્મોનો સંબંધ છૂટી ગયો છે, તેથી તે કેવલ છે. તે મારો આત્મા પણ પરમાર્થે રાગાદીના સંબંધ વગરનો ને કર્મના સંબંધ વગરનો છે, એમ પોતાના આત્માને કેવળ, કેવળ એટલે પરસંબંધ રહિત એકલો શુદ્ધ અનુભવવો, તે પરમાત્મા થવાનો ઉપાય છે. અને એક જગ્યાએ લીખા ને, વહી પરમાત્મા કી સચ્ચી ભક્તિ હૈ, યાને વો રાગાદી રહિત અપને કો દેખના વહી પરમાત્મા કી સચ્ચી ભક્તિ હૈ. વહી સબ ઉસી મેં લગા,
પ્રત્યાખ્યાન વહી સામાયિક સબ સમાચાર મેં યહી બાત હૈ.
यहाँ जो भक्ति कर रहे हैं ना, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, वो भक्ति के जो भाव आ रहे हैं उससे भी अपने को रहित अनुभव कर रहा है उसको, मैं उससे भी भिन्न हूँ, उसको वो भक्ति की अधिकता नहीं लग रही है. अधिकता किसकी है, अधिक जाने आत्मा ने. क्या એસી ની વાત, વો તો ક્યાં હૈ, મેં આગે વાલી કેવલ કી બાત ચલ રહી હૈ, કે પર મારો આત્મા પણ परमार्थे रागादिना संबंध वगरनो वर्तमान में उसके राग है भगवान के प्रति भक्ति भाव है उस राग से भी रहित ने कर्मना संबंध वगरनो छे जो विद्यमान यानी पर्याय में राग होते हुए भी उससे मैं भिन्न हूँ उससे रहित हूँ ऐसी उसके अनुभव भी है ऐसे शुद्ध अनुभवो ते परमात्मा थवानो उपाय छे और उसी को सच्ची भक्ति भी कहेंगे। समय सारमा पण कह्युं छे एकत्व विभक्त आत्मानो अनुभव ते जैन शासन छे। यानी जैन शासन क्या है? शासन समझते? शासन किसको कहते हैं? हाँ मिली भाई, शासन किसको कहते हैं मालूम नहीं? शासन अभी किसका शासन चल रहा है? अरविंद भाई कहते हैं मोदी का। हाँ, देखो एक शासन काल आपने सुना होगा और एक होता है तीर्थ काल। तीर्थ काल यानी जब तक उनका समोचरण चलता है उपदेश चलता है तो तीर्थ काल, और दूसरे तीर्थंकर नहीं होते तब तक उनका शासन काल कहलाएगा। वो लौकिक में शासन राज को कहते हैं, किसका राज चल रहा है उसका शासन कहते हैं, इनका शासन चल रहा है। तो यहाँ कहते हैं जैन शासन क्या है? तो कहते हैं आत्मा का अनुभव। कौन से आत्मा का? तो एकत्व विभक्त आत्मा, अपने से एकत्व पर से विभक्त। कर्मना बंधन विनानो ने परना संबंध वगरनो एवो जे शुद्ध ज्ञायक स्वभाव कैसा है? कर्म के बंध से रहित है ने परना संबंध वगरनो एवो जे शुद्ध ज्ञायक स्वभाव तेनी सन्मुख थई ने तेनो अनुभव करवो तेज जैन शासन छे। पूरे भी आगम का तात्पर्य भी यही है। क्या करना है? बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जो एकत्व विभक्त आत्मा बताया कहो या कर्म बंधन से और परस्य संबंध से रहित ऐसा जो शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है उसके सन्मुख होकर उसका अनुभव करना। अने जे पोताना आवा आत्मानो अनुभव करे तेने ज परमात्मानी परमार्थ ओळखाण थाय छे के अहो रागथी जुदो पड़ीने जे अतिंद्रिय आनंदनो अंश मने वेदनमां आव्यो ते जातनो पण तेथी अनंत गुणो परिपूर्ण आनंद परमात्माने प्रगटी गयो छे ने तेवो सर्वथा राग रहित थई गया छे। यानी जिसके अंश के वेदन में इसके इतने अतिंद्रिय आनंद आ गया है तो कहते वो परिपूर्ण अनंत कैसा होगा? आ रीते अंशना वेदन पूर्वक पुराणु भान थता क्या न? वेदन तो हुआ अंश का और उसने नक्की किया पूरे का। साधक ने तेना प्रत्ये खरी भक्ति अने बहुमान आवे छे। उनके प्रति भक्ति और बहुमान क्योंकि पर्याय में प्रकट किया और अपने स्वयं के स्वभाव प्रति बहुमान क्योंकि ऐसा मैं हूँ स्वभाव से और उसी को लक्ष्य करते करते पर्याय में वो परिपूर्णता तक पहुंचने वाला। परमात्मा प्रत्ये जेवा भक्ति बहुमान ज्ञानी ना अंतरमा होए तेवा अज्ञानी ने न होए। भगवान परमात्मा नु विविक्त एवं पण एक नाम छे। विविक्त एटले भिन्न। आत्मानो स्वभाव रागादिथी विविक्त छे एम पहला जाणीने भगवान राग थी खाली एटले विविक्त थई गया। एने पहले स्वभाव का निर्णय किया जो राग थी रहित है। पर्याय में राग के रहते हुए तभी निर्णय ये हुआ कि स्वभाव मेरा राग से रहित है, तब जाके उसी को लक्ष्य करने से परमात्मा दशा प्रकट हुई। यानी पर्याय में भी राग जिसे परिपूर्णता रहित हो गए, पूर्णता रहित हो गया। इसे कहते आत्मानो स्वभाव रागादिथी विविक्त छे एम पहला जाणीने भगवान राग थी खाली एटले विविक्त थई गया। जो आ परमार्थ विविक्त शय्यासन, क्या बात। એ વિવિક્ત શૈયાસન નામ સુને કહા સુને હા મુનિ ઉનિ બારા પ્રકાર કે તો બતાય ને હુઆ તને અનશન ઉનોદર વૃત્તિ પરિસંખ્યાન વિવિક્ત શૈયાસન બ્રહ્મચર્યની રક્ષા માટે વિવિક્ત શૈયાસન કરવું એટલે કે સ્ત્રી પશુ વગેરેથી ખાલી એકાંત સ્થાનમાં રહેવું એમ કહ્યું છે. તેમાં તો વ્યવહારમાં તે જાતનો વિકલ્પ હોય છે તેની વાત છે, પણ પરમાર્થે ક્યાં કહા એને સચ્ચા એને વ્યવહાર છે તો એ તો બહાર કી બાત હોય, પરંતુ સચ મેં એને પરમાર્થ છે વાસ્તવિક રૂપ છે ક્યાં સમજના પરમાર્થે આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા રાગના સંગથી પણ રહિત છે, રાગથી પણ વિવિક્ત છે એમ જે જાણતો નથી ને રાગના સંગથી લાભ માને છે તેને ખરેખર વિવિક્ત શૈયાસન નથી પણ વિકારમાં જ શૈયાસન છે. એને કેવલ બાહ્ય ક્રિયા સે વો નહીં હોતી બાત. લોકો તો પહેલે મેં પહેલે ક્રિયા કરને હા યે કરો એસા લગતા હૈ, પરંતુ મૂલ મેં ઉન્હોને યદિ વો અપને સ્વભાવ કો જાના હૈ કે નહીં, નક્કી કિયા હૈ કે નહીં કે સ્વભાવ તો રાગ સે તો રહિત હી હૈ, એસે જો ઉનકો રાગ હોગા કૌન સા યે એસા પાલન કરને કા, પરંતુ અપને સ્વભાવ કો તો ઉસ રાગ સે ભી ભિન્ન હી અનુભવ કર, યે બાત હૈ. ફિર પઢેંગે ઇસકો દેખો. વિવિક્ત પરમાર્થ વિવિક્ત શૈયાસન હૈ કૌન સા આત્મા કા સ્વભાવ રાગા રાગાદી સે વિવિક્ત હૈ એસે પહેલે જાનકર ભગવાન બાદ મેં કૈસે હુએ રાગ સે ભી વિવિક્ત હો ગયે ખાલી હો ગયે ઓર ઉસી કો વિવિક્ત શૈયાસન કહા. અબ બ્રહ્મચર્ય કી રક્ષા કે લિયે સ્ત્રી પશુ વગેરે સે રહિત એસે જો એકાંત સ્થાન મેં રહે ના ઉસકો વિવિક્ત શૈયાસન નામ દિયા હૈ, અને વો ઇસ જાતિ કે વિકલ્પ હોતે હૈ ઓર એસી ઉનકે આચરણ મેં બાત આ જાતી હૈ. પણ પરમાર્થે આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા રાગના સંગતિ પણ રહિત છે, રાગથી પણ વિવિક્ત છે એમ જે જાણતો નથી. પર્યાયમાં રાગ કે રહેતે હુએ જો રાગ સે રહિત હૈ ઉસકી બાત ચલ રહી, જો એસા નહીં જાન રહે ને રાગના સંગથી લાભ માને છે, રાગના સંગતી ને એસે રાગ જો હૈ શુભ ભાવ આ રહે હૈ પાલન કરને કે તો કીધે ઉસસે લાભ માનતે હૈ, ઉસસે મેં આગે બઢ રહા હું યા ઉસમે જીતના મેં કંટ્રોલ કરૂંગા ઉતના મેં અધિક ધર્માત્મા હું હા મુજે ઓર આગે બઢુંગા, લાભ માને છે તેને ખરેખર વિવિક્ત શૈયાસન નથી પણ વિકારમાં જ શૈયાસન છે. વિકાર એ રાગમાં જ વો સો રહા હૈ એમ કહીએ. ભલે તે જંગલમાં એકાંત ગુફામાં એકલો પડ્યો રહેતો હોય તો પણ અંતરમાંથી રાગનો સંગ છૂટ્યો નથી, એને ઉસ જાતિ કા રાગ હૈ ઓર ઉસ રાગ સે એકત્વ પડા હૈ, એ કહેના ચાહતે. રાગ સે વિવિક્ત એસે આત્મા કા અનુભવ નહીં કિયા હૈ તો ઉસ રાગ કે સાથ ઉનકા એકત્વ પડા હૈ, વહાં ઉસમે એક મેં એક માનતે હૈ ઓર ઉસસે મેં બઢ ગયા હું યે મેરી પોઝિશન હૈ એસા માનતે હૈ રાગ કે કારણ. તો પણ જે દેખો જંગલમાં એકાંત ગુફામાં એકલો પડ્યો રહેતો હોય તો પણ અંતરમાંથી રાગનો સંગ છૂટ્યો નથી, તેથી તેને ખરેખર વિવિક્ત શૈયાસન હોતું નથી. દેખો સંગ કા એક અર્થ ક્યાં હોતા માલુમ હૈ? પરિગ્રહ. સંગ કા અર્થ તે સાથ ઓર યહાં પરિગ્રહ. પરિગ્રહ કે નામ માલુમ હૈ? હા રૂમા હા અંતરંગ રહે બહેન. તો અંતરંગ કુછ પરિગ્રહ જી ના કિતને અંતરંગ પહેલે યે નક્કી કરો. દસ બહિરંગ હા ઓર અંતરંગ ચૌદ હૈ ઉસમે સે સોલા તો યે હો ગયે હા ચૌદ ગિનાઓ ચૌદ ગિનાઓ. આશાબેન આપ બતાના ચાહતી? અંતરંગ પહેરંગ, અંતરંગ પરિગ્રહ, આ બતા ને જાતિ મિથ્યાત્વ. હા બોલો નીતિનભાઈ, બોલો બોલો. અરે ક્યો નહીં, આપ તો અચ્છા ઉત્તર દેતે હૈ ના. હા હમારે મિલીભાઈ કબ સે વો ઉત્તર દેને કે લિયે
બોલને કો
બોલો બોલો.
મિથ્યાત્વ ચાર કટા નો નો
હે ને, મિથ્યાત્વ ક્રોધ માન માયા લોભ મે સભી આ ગયે. હા તો ચાર કષાય મે ઉસકે તો જાતિ અલગ અલગ નહીં કરના, વો ચારો હી કષાય. નવ નવ કષાય કિતને હુએ, એક મિથ્યાત્વ ચાર કષાય હુએ, પાંચ હુએ ઓર નવ, નવ પાંચ ચૌદા. તો યહાં ક્યા લિખતે દેખો, અંતરમાંથી રાગ નો સંગ છૂટ્યો નથી. એને યહાં તો અંતરંગ સંગ પડા હૈ, હે ના, અંતરંગ પરિગ્રહ પડા હૈ ઉનકા, રાગ કા સંગ છૂટા નહીં, ઉસકા અર્થ ભી મિથ્યાત્વ ભી હૈ. તેથી તેને ખરેખર વિવિક્ત શૈયાસન હોતું નથી. અને પરમાત્મા રાગાદિથી કેવા વિવિક્ત છે તેને પણ તે ઓળખતો નથી. અને ઉન્હોને ખરેખર પરમાત્મા કો ભી નહીં પહેચાના. આત્માને પરથી વિભક્ત જાણીને તેમાં વસવું, એકાગ્ર થવું તે વિવિક્તપણું છે. લોકો કો તો બાહ્ય ત્યાગ ઓર વહી દિખતા હૈ, કિતના માલ નિકાલે. વહી તો
એક બાત બતાઉં કે હમ પ્રવચન મે જાતે હૈ, જૈસે એક જગહ ગયે થે, વહાં એક બ્રહ્મચારી વ્યક્તિ પ્રવચન કે લિયે આયે થે, આતે મતલબ એસે શિબિરો મે, તો ઉનકા બહોત નામ, વો આને વાલે પ્રવચન કરને વાલે બોલે એકદમ ભીડ, એસી છોટી છોટી બચ્ચિયાં આગે આકે બેઠે. તો યે હા અવાજ નહીં આ રહી હૈ, અરે હમને તો કલ નહીં બેટરી ડાલી ભાઈ. શાસ્ત્ર કો સમજ. હા તો વહાં વો આયે સ્ટેજ પે, એ ઇધર નહીં બેઠને કા, ચલો ઇતના આગે ક્યો આ ગયે, વો સ્ટેજ પે લોગ નીચે બેઠે. યે કૈસા બ્રહ્મચર્ય, રાગ કા સંગ છૂટા નહીં હૈ, યે કોઈ દિખાવા થોડી હોતા હૈ. યહાં જો ગુરુદેવ શ્રી કહે રહે હૈ વો કિતની માર્કે કી બાત હૈ. મેં વહી સોચ રહા થા જબ સે કે બ્રહ્મ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માના રાગથી સંગથી રહિત છે, રાગથી પણ વિવિક્ત છે. એ જે જાણતો નથી તેને વિવિક્ત શૈયાસન નથી. યહાં તો વિવિક્ત શૈયાસન નહીં, બ્રહ્મચર્ય નહીં. હમ જો બાત બતા રહે વોઈ હૈ. હા જા
હા દેખો અભી નીચે કા પેરેગ્રાફ વહાં આયે હમ, નીચે સે દો લાઇન હૈ ના, વહાં સે પઢેંગે.
હલો હલો.
અહીં તો ભગવાન પરમાત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ સહિત તેમના અનેક નામોની વાત છે. જે નામ હમે ઉનકે સ્વરૂપની પહેચાન કરાતે હૈ, એસે નામોની યહાં વાત ચાલ રહી હૈ. આત્મામાં અનંત ગુણો છે, તેના ગુણોની અપેક્ષાએ તેને ભિન્ન ભિન્ન અનેક નામોથી કહેવામાં આવે છે. તેમાંથી કેટલાક નામો તો ઉપર કહ્યા, અભી થોડી બહોત કહી દીધી યહાં પર. તે ઉપરાંત સર્વના જ્ઞાતા હોવાથી ભગવાનને સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. અભી કુછ નામ ઓર ભી બતા રહે. સહજ આત્મિક આનંદ સહિત હોવાથી સહજાનંદી પણ કહેવાય છે. કૈસે આત્મિક આનંદ, સહજ સ્વાભાવિક હૈ, સ્વાભાવિક ભી નહીં કહે, સ્વાભાવિક. રોજ અભી આ રહે ના કલશામૃત મેં સહજમ સહજમ સ્વયં સહજમ એસા આતા હૈ ના, જ્ઞાનમ સદા વિંદતી, એને એસે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કો વો હંમેશા સતત અનુભવ કર રહે. હા દેખો યહાં સર્વજ્ઞ હોય, સહજ આત્મિક આનંદ સહિત હોવાથી સહજાનંદી પણ કહેવાય છે. राग द्वेष मोह रूप कलंक रहित होवाथी निकलंक अथवा अकलंक पण कहेवाय छे। ये निकलंक अकलंक मालूम है कोई हुए कहानी कहानी से नहीं आती। ये कलंक रहित इसलिए निकलंक या अकलंक। रागादि अंजन रहित होवाथी निरंजन पण कहेवाय छे। जन्म जरा मरण, जरा क्या होती है बुढ़ापा, बुढ़ापा। जन्म जरा मरण रहित होवाथी अज अजर अमर पण कहेवाय छे। अज एने जन्म से रहित, अज विना जन्मने वाली, ज एने जन्म, अजर एने जरा रहित, अमर एने मरण से रहित। वळी तेओ ज ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप होवाथी खरा बुद्ध छे। पोताना ज्ञानानंद स्वरूपनी मर्यादा रूप सीमा ने धारण करता होवाथी तेओ ज सीमंदर छे। आत्माना अनंत महान पराक्रम रूप वीरता प्रकट करेल होवाथी तेओ महावीर छे। ये किसी एक तीर्थंकर का नाम नहीं, ये तो एप्लीकेबल टू एवरीबडी, हाँ सभी परमात्माओं को ये नाम हो सकता है। देखो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते, वैसे अनेक शब्द एक ही परमात्मा को भी बताने वाले हैं। वो मुझे याद है समय ज्ञान चंद्रिका में गुण रयण भूषण उदयम, उसके उन्होंने कितने 11-12 प्रकार से अर्थ किए। कहीं भगवान को बताए, कहीं 2400 तीर्थंकर को बताए, कभी नहिमिनाथ को बताए, कभी मुनि को बताया, क्या क्या बताए थे। उन्होंने अभी भी हम कौन सा वो पढ़ रहे थे, उसमें भी बात आई थी, यानी वो एक ही श्लोक होता है उसमें से अनेक अर्थ निकाल के बताते। यहाँ तो अभी एक ही भगवान के लिए अलग अलग नाम बता रहे हैं। व्यक्ति तरीके तो एक नाम थी एक भगवान ओळखाय छे। क्या कहते हैं व्यक्ति, क्योंकि उनका जो नाम रखा गया था, किसने रखा, माँ बाप ने रखा ना इंद्र नाम रखते हैं जो तीर्थंकरों के नाम, हाँ नाम रखते हैं उनके, हाँ उनके जो विशिष्ट चिन्ह देकर उनके नाम रखा जाता है, इंद्र उनका नाम रखते हैं। तो व्यक्ति तरीके तो एक नाम थी एक भगवान ओळखाय, पर गुणवाचक नाम तरीके एक नाम कहता तेमा बधाय भगवान आवी जाय छे। सर्वज्ञ कहने पर सभी भगवान आ जाएंगे, है ना, कोई भी एक नाम लो क्योंकि वो गुणवाचक है, तो एक नाम लेने से सभी उसमें इंक्लूड हो जाते। जेम के सीमंदर कहता व्यक्ति तरीके तो महाविदेह ना पहला तीर्थंकर सत्यवती नंदन ओळखाय छे। सत्यवती नंदन क्या होता है, रूमानंदन किसको कहेंगे माँ का नाम होता है उसका नंदन, माँ का नंदन बेटा, इन्हें सत्यवती का पुत्र ऐसा। ये देवकी नंदन आपने सुना होगा नाम, देवकी नंदन गोपाला, देवकी का पुत्र हाँ रघुनंदन, नंदन है उनका पुत्र। देखो क्या कहते हैं, महाविदेना पहला तीर्थंकर ओळखाय छे, तथा महावीर कहता भरत क्षेत्र ना छेल्ला तीर्थंकर त्रिशलानंदन, अभी तो समझ में आई बात, ओळखाय छे। पण गुणवाचक तरीके तो बधाय परमात्मा, यानी बधाय परमात्मा जिनवरों ने सीमंदर अथवा महावीर कहवाय छे। ये किसी को भी एप्लीकेबल है, गुणवाचक नाम तो सभी को ही एप्लीकेबल है। केम के बधाय भगवंतो स्वरूपनी सीमा ने धारण करनारा छे ने महान वीर्यना धारक छे। आ रीते गुणना स्वरूपथी परमात्मा ने ओळखवानी प्रधानता छे, अने परमात्मा ने जेटला नामों लागू पड़े छे ते बधाय नामों आ आत्मा ने, किसको अपनी ओर देखना, हाँ आ आत्मा ने, आ कहने से वो साक्षात विद्यमान है। वो होगा कि नहीं, अभी क्या होगा, अंदर पड़ा होगा, अरे नहीं तुम स्वयं हो, તો આ આત્માને પણ સ્વભાવ અપેક્ષાએ લાગવું પડે છે. એવું ઉનકે નામાવલી યાદ કરને સે કુછ નહીં હોગા, રોજ ઉઠતે હમને હા, પરંતુ એક એક નામ મેં જો ગુણ કહે જાતે હૈ વો સ્વભાવ સે મેરે ભી હૈ, મેરા સ્વભાવ ઉસમે લક્ષિત હોના ચાહીએ. કેમ કે સ્વભાવથી તો આ આત્મા પણ પરમાત્મા જેવો જ છે, જ લગાય. પરમાત્માના ગુણોને ઓળખીને પરમાત્માનું સ્વરૂપ જે જાણે તેને આત્માનું સ્વરૂપ પણ જણાયા વગર રહે નહીં. અભી આત્મા કા સ્વરૂપ નહીં જાણને મેં આયા તો અભી તો પરમાત્મા કો સચ્ચા પહેચાના નહીં. ક્યોંકિ હમને સુના ના અભી અભી પ્રવચન સાર મેં, અરિહંત કો જિસને પહેચાન લિયા દ્રવ્ય સે ગુણ સે તો ઉસને આત્મા કો ભી જાણ લિયા. તો અભી પરમાત્મા કો પહેચાનના બાકી હૈ ના, નિર્ણય જિસ સમય હોગા, હા ભગવાન કા કહો યા અપને સ્વભાવ કા કહો, ઉસી સમય યહાં સમય દર્શન આત્મા કી અનુભૂતિ હોગી. જેટલા ગુણો પરમાત્મામાં છે તેટલા જ ગુણો આ આત્મામાં છે, ને તેનો વિકાસ કરીને, વિકાસ એટલે પર્યાયમાં પ્રકટ કરીને આ આત્મા પોતે પરમાત્મા થઈ શકે છે. હવે એ પર્યાયમાં પ્રકટ કરને કી ભી કોઈ ચિંતા કરને કી જરૂરત નહીં, વો આત્મા સ્વભાવ સે હી એસા હૈ કે ઉસકે વો સારા હી સ્વભાવ પ્રકટ હોવે, પણ હમને ઉસકો પહેચાનને સે ઇનકાર કરકે રખા હૈ મૂલ મેં. હા, આ રીતે આત્માના ધ્યેયરૂપ જે પરમાત્મ પદ તેને બરાબર ઓળખવું જોઈએ. દેહને એ પ્રકટ કરને રૂપ જો ધ્યેય લૌકિક મેં ધ્યેય જીસકો કહે સાધ્ય જો કરના હૈ હમકો, તેને બરાબર ઓળખવું જોઈએ. ઓળખાણ વિના તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ક્યાં કહા, એટલે સુખ થતું નથી. પ્રાપ્તિ હોના એને ક્યાં પર્યાય મેં અતિન્દ્રિય આનંદ પ્રકટ હોના. આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યા વગર દેહાદીને પોતાના માનીને જીવ અનાદિકાળથી દુઃખી થઈ રહ્યો છે. ઉસકા દુઃખ કા એકમાત્ર કારણ યહી હૈ કે અપને સ્વરૂપ કો વાસ્તવિક સ્વરૂપ કો જાના નહીં, ઓર દેહાદી કો હી મેં હું યા મેરે હૈ એસા માનકર વહી ઉસકે પરિપાટી ચલીએ, હર ભાવ મેં એસા હી ચલતા આયા. તે દુઃખ કહો કે અસમાધિ કહો, તે ટળીને સુખ અથવા સમાધિ કેમ થાય તેની આ વાત છે. ક્યુકી ઇસકા નામ હિ સમાધિ તંત્ર હૈ ના, ઉસકા પૂરા વો તંત્ર બતા કે જાયેંગે, યહી રુકેંગે અભી. જાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂઝે લો કાલો, સોવાણી મસ્તકન સદા દેત હો. નીતિનભાઈ નમો પરંતા નમો.